आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार बच्चों, मैं हूं आयु कपिल। मैं कानपुर में डॉक्टर AITH से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हूं और आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 8 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 की किताब से अध्याय 1 जो हम पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2। हमने पढ़ा बच्चों पहले भाग में कि संविधान क्या है, भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या हैं, नेपाल में कैसे लोकतांत्रिक सत्ता आई, और हमने पढ़ा कि कैसे संविधान सभा ने काम किया, हर तरह के सिद्धांत को ध्यान में रखकर हमारा भारतीय संविधान बनाने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे अपने भारतीय संविधान के जो सशक्त सिद्धांत हैं उनके बारे में। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, पेज नंबर 11 है, इस पर पहला जो पॉइंट है वो है संघवाद फेडरलिज्म। इसका मतलब है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे बच्चों। आपने कक्षा 6 में देखा था कि कैसे जो तीसरा स्तर है पंचायती राज वो काम करता है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा था राज्य सरकार के बारे में, और अब हम कक्षा 8 में ज्यादा बात करेंगे केंद्र सरकार की। फेडरलिज्म क्या होता है? संघवाद होता है कि एक देश में एक से ज्यादा स्तरों द्वारा सरकार को चलाया जाना। जैसे कि हमारे देश में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पंचायती राज इत्यादि। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लेने लगे। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। बच्चों इसमें क्या समझाया गया है कि जो भारत है वो बहुत ही बड़ा देश है, और जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे वो ये नहीं चाहते थे कि दिल्ली में बैठे कुछ लोग ही पूरा देश चलाते रहें बिना ये जाने कि भारत के किस प्रांत में कैसी समस्याएं हैं और लोगों की क्या मांगे हैं। इसलिए हमारे तब के संविधान सभा के सदस्यों ने यह सोचा कि हमारी जो सरकार का कार्य भार है, जो कामकाज करने का तरीका है, वो क्या होना चाहिए, स्तरों में विभाजित होना चाहिए। तो उन्होंने ये सब क्यों किया, ताकि हर प्रांत के लोगों के लिए ठीक तरह से काम हो सके। उन्होंने ये कहा कि और हमारा संविधान इसलिए बनाया गया, संविधान ने फिर हमें ये अधिकार दिया राज्यों को कि वो अपने कुछ फैसले अपने आप बिना किसी के उत्तरदायित्व के ले सकते हैं, वो बिना किसी को आंसरेबल हुए, वो बिना केंद्र सरकार से मंजूरी लिए अपने कुछ अधिकार अपने ही दम पर ले सकते हैं। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर भी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए पर जो राष्ट्रीय महत्व के सवाल हैं उन पर राज्य को केंद्र सरकार की बातें माननी पड़ेंगी। कार्य क्षेत्र में संविधान ने कुछ सूचियां दी हैं जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है, कि राज्य सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है अपने लिए, और केंद्र सरकार किन मुद्दों पर कानून बनाएगी हर राज्य के लिए, ठीक है, और किस सरकार को कहां से पैसा लेना है अपना काम करने के लिए, ये सब हमारे संविधान में लिखा है। तो उन्होंने कहा है कि संघवाद के अंतर्गत, जो संविधान में संघवाद का पॉइंट है उसके अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, वो सिर्फ केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि उन्हें भी अपने खुद के ताकत और अधिकार मिले हुए हैं संघवाद के तहत, जिससे वो अपने कानून और नीतियां बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव खुद लोग करते हैं, लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी थी। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप इसी पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है सिद्धांत बच्चों, संसदीय शासन पद्धति का। हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने सोचा कि लोगों को खुद अधिकार मिलना चाहिए अपने वोट डालकर अपना शासक चुनने का, जो लोकतांत्रिक तरीके से उन पर शासन करेगा, यानी कि देश को चलाएगा। तो उन्होंने और लोग उन्हें तब पता था सदस्यों को कि लोग जो हैं वो इस काबिल हो चुके हैं, क्योंकि स्वतंत्रता संघर्ष ने हमें इस काबिल बना दिया है कि अब हम खुद सही इंसान को चूज करें कि हमें कौन हमारा जो है सत्ता में आएगा। तो उन्होंने कहा कि इस तरह क्या होगा जब और हम सबको देंगे ये अधिकार के किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग का इंसान जो कि 18 या उससे बड़ी उम्र का हो, वो आके वोट डाल सकता है। और इस तरह से हम हर तरह के भेदभाव को खत्म करने के लिए भी काम कर सकते हैं। इस तरह किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा, हर लोग समान एक धरातल पर होगा और सब जो है समान तरीके से अपने उस अधिकार का प्रयोग करेंगे, तो इससे भेदभाव की जो हमारे अंदर भावना है, लोगों के अंदर भावना है, वो कम होगी। तो इस तरह उन्होंने ये भी कहा इसके अंतर्गत कि कोई भी इंसान चुनाव में खड़ा भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, ये भेदभाव वहां भी नहीं होगा। कोई भी इंसान अपने चुनाव में चुनाव लड़ सकता है और जीत गया तो वो देश को चलाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम अपनी पुस्तक की दूसरी इकाई में पढ़ेंगे। तीसरा जो पॉइंट, इससे पहले ऊपर एक चित्र गिवन है, उसके बारे में लिखा है, जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी, तो सभा के सदस्य ए.के. अय्यर ने कहा था, क्या कहा था, कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। के उन्होंने कहा कि इस जो ये हम सबको राइट दे रहे हैं, सबको अधिकार दे रहे हैं वोट डालने का, ये आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है। और यह विश्वास उन्होंने दिलाया कि इस तरह जो सरकार की स्थापना होगी वो ज्ञान का उदय करेगी, यह आम आदमी के कुशल क्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। ठीक है बच्चों, नीचे चित्र में दर्शाया गया है कि लोग अपना वोट डालने के लिए कतार में खड़े हैं। आपने देखा भी होगा लोग वोट डालने जाते हैं, आपके मम्मी पापा भी जाते होंगे और आप भी जाएंगे जब आप 18 साल से बड़े हो जाएंगे, 18 साल के हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट आता है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों में व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। तो शक्तियों का बंटवारा कैसे हुआ कि तीन भागों में बांट दिया गया शक्तियों को, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका और एक विधायिका। विधायिका में वो लोग हैं जिन्हें हमने चुना है वोट डालकर, फिर जो प्रतिनिधि करेंगे निर्वाचित होकर अपने उस जगह का जहां से वो निर्वाचित हुए हैं। कार्यपालिका क्या है? वो लोग जो कानूनों को लागू करते हैं और शासन का काम चलाते हैं, काम को देखते हैं कि काम सही ढंग से हो रहा है नहीं। न्यायपालिका क्या है? जो न्याय करते हैं और क्या बनाते हैं, व्यवस्था बनाते हैं कि कैसे एक लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं देश का कि सब न्याय के तहत सही ढंग से हो रहा है या नहीं। तो सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। सबकी शक्तियां एक दूसरे से अलग हैं और शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और शक्तियां इस तरह से विभाजित हैं कि एक अंग जो है वो संविधान का वो दूसरे अंग पर नजर रखेगा कि वो अपना काम सही से कर रहा है या नहीं, या अपनी शक्तियों का गलत उपयोग तो नहीं कर रहा, और इस तरह तीनों अंगों के बीच एक संतुलन रहता है और देश अच्छे से काम कर पाता है। बगल में संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। अब तब उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो जो कार्यपालिका के अधिकारी हैं वो जो विधायिका है उनकी बातों को ही मानने से इनकार कर दे। तो इसलिए कुछ ऐसे नियम बनाए गए ताकि जो कार्यपालिका है उसके लोगों का जो शक्ति है वो नियंत्रित रहे और सीमित दायरे में रहे। अब नीचे ब्लू बॉक्स हम देखेंगे कि इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संख्या होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से नहीं ज्यादा व्यापक होता है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज्यादा व्यापक होता है। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ ये है बच्चों कि यहाँ राज्य का कई बार उपयोग हुआ है। राज्य का मतलब सिर्फ उन राज्यों से नहीं जिनमें हम रहते हैं, जो देश के अलग अलग राज्य होते हैं उनसे नहीं है सिर्फ मतलब। राज्य का एक और मतलब होता है जो कि है कि जिस हम देश में रह रहे हैं उसका पूरा भूभाग सहित हर एक प्रत्येक नागरिक उस देश का, ये मिलकर एक राज्य बनाता है। यानी हम एक भारतीय राज्य में रहते हैं। नेपाल को हम एक नेपाली राज्य कह सकते हैं। स्टेट यानी एक देश का भूभाग उसके नागरिकों सहित, ये बनाता है एक राज्य को। कहते हैं ना भारत गणराज्य, क्यों? क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। ये उस राज्य से जो, और जो हम राज्य की बात करते हैं कि ये देश है और इसमें इतने राज्य हैं, हम उत्तर प्रदेश राज्य के हैं, उस राज्य से मतलब है सरकार का जो कि हमने खुद चुनी है अपने देश को चलाने के लिए, अपने राज्य के काम को चलाने के लिए। वो जो सरकार है वो बदल सकती है समय के साथ साथ। एक का काम हमें नहीं पसंद आया तो हम अगले 5 साल बाद या जितने साल का है चुनाव लड़ने का, उतने सालों बाद हम उस सरकार को बदल सकते हैं। पर जो ये वाला राज्य है, इस राज्य का अर्थ एक बहुत बड़े दायरे में है। उसका मतलब है, इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा भूभाग एक देश का जिसमें उसके नागरिक हैं, उसमें उन नागरिकों सहित उस देश के भूभाग को कहते हैं वो राज्य, यानी भारतीय राज्य। तो आगे हम पढ़ेंगे कि चौथा कौन सा सिद्धांत है हमारे संविधान का, जो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान के अंतरात्मा भी कहलाता है। भारतीय संविधान में सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसे माना जाता है मौलिक अधिकारों का सिद्धांत। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। हमारे साथ इतना अन्याय हुआ था ब्रिटिशों ने जब हम पर राज किया, अंग्रेजों ने जब हम पर राज किया, कि अब लोगों को यह था कि किसी के अधिकार के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए इस आजाद भारत में। इसलिए उनके लिए उन्होंने सोचा कि हम कुछ मौलिक अधिकार देंगे, उन अधिकारों के तहत किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। तो लिहाजा कुछ लिखित अधिकार हमें लिखने होंगे अपने संविधान में। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसे अधिकार बनाएंगे जिससे ताकि जो सत्ता में सरकार है वो आम नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना कर सके और उनके अधिकार सुरक्षित रह सके। वो अपने बिना अंकुश से अपने मनमाने तरीके से कोई भी काम ना करें जो कि नागरिकों के हित के खिलाफ हो। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि नागरिकों के पास कुछ मौलिक अधिकार हैं। किसकी वजह से? संविधान की वजह से। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, कि हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा ये कि अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अब क्या हुआ है बच्चों के ये इसलिए जरूरी भी थे अधिकार ताकि बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय ना करें। मौलिक अधिकार के तहत ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि इन मौलिक अधिकारों को बनाने के दो उद्देश्य हैं। पहला तो कि जो नागरिक है उसे पता होना चाहिए कि मेरे पास कौन कौन से अधिकार है। कोई उसका शोषण कर रहा हो तो वो अपनी दावेदारी पेश कर सके कि मेरा तुम शोषण नहीं कर सकते, मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास ये अधिकार है। और दूसरा ये कि जो भी कानून बनाने का अधिकार है जिन जिन इंस्टीट्यूशंस के पास, जिन जिन के पास कानून बनाने का अधिकार है वो किसी भी तरह अन्याय नहीं कर सकते क्योंकि सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हैं। वो मौलिक अधिकार की रक्षा करना, ये अधिकार ऐसे हैं, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हैं, उन्हें मानने ही पड़ेंगे। जो भी कानून बना रहा है उसे मानना ही पड़ेगा इन अधिकारों को, और ये मानकर उसे फिर कानून बनाना पड़ेगा कि किसी के साथ अन्याय ना हो। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में अखंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह अखंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। मौलिक अधिकारों के अलावा संविधान में एक खंड है नीति निर्देशक तत्वों का। उनके तहत क्या होता है, संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से सुधार लाया जा सके हमारे देश में, गरीबी दूर हो सके, अच्छे कानून और नीतियां बन सके जिनके मार्गदर्शन से देश की तरक्की हो सके। इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। कौन? जो कि बना रहे हैं कानून और नीतियां ताकि गरीबी को हटाया जा सके और देश को एक समान रूप से तरक्की की ओर चलाया जा सके। अब ब्लू बॉक्स में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के में से कुछ अधिकार लिखे हैं जो कि हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बच्चों पढ़ते हैं इन्हें। पहला जो हमारा अधिकार है बच्चों वो है समानता का अधिकार। कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकेगा, लेकिन इससे कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। इस अधिकार के तहत हम सबको अधिकार है कि हमारे साथ कोई भी अन्याय नहीं हो सकता, हम सबको सुरक्षा प्रदान की जाएगी बिना किसी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव के। हम सबको एक समान ट्रीटमेंट मिलेगा। खेल के मैदान, होटल, दुकान, कहीं भी हम जा सकते हैं, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पर। लेकिन कुछ अपवाद है जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और जो छुआछूत की प्रथा थी उसका भी उन्मूलन कर दिया गया है इस अधिकार के तहत। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार, और इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता है, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने की तथा कोई भी व्यवसाय पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। हमें स्वतंत्रता है कि हम जो चाहे वो काम करें, जो चाहे वो नौकरी करें, जो चाहे वो व्यवसाय करें, देश के किसी भी कोने में जाएं, हमें कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि हमारे पास अधिकार है स्वतंत्रता का। हम जहां चाहे अपना उस तरह से अपना अगर वो संविधान के नियमों के पालन के तहत है तो हम अपनी मन की अभिव्यक्ति रख सकते हैं, कोई हम पे कोई बंधन नहीं डाल सकता और हमें पूरी अभिव्यक्ति करने की अनुमति है। हमारे पास अधिकार है कि हम कोई भी सभा और संगठन बना सकते हैं, जिस तरह के लोगों के साथ हमें रहना है हम रह सकते हैं, हमारी मर्जी है, हमारे ऊपर कोई भी बंधन नहीं है। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मजदूरी पर रखना अपराध है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत जो मानव व्यापार होता है, मानवों की तस्करी होती है, खासकर महिलाओं और बच्चों की, उन्हें बेच दिया जाता है काम के लिए, तो ये सब, और जो जबरदस्ती श्रम कराया जाता है, बंधुआ मजदूर की जो प्रथा है, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों के को अगर आप मजदूर बनाकर काम करा रहे हैं, तो ये सब अपराध में शामिल है। ये हमें देता है शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत, हमें ये सब मिला है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। उसके तहत यह है कि आप किसी भी धर्म या समुदाय से बिलोंग करते हो, आप अपने समुदाय या धर्म का कोई भी शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, अपनी जो शिक्षा है उसको फैला सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और के साथ अन्याय करें, किसी और को ना छेड़ें, अपना काम करें, इसका अधिकार है। पांचवा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा अधिकार है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, कि अगर आपको लगता है आपका कोई भी मौलिक अधिकार आपसे छीना गया है, तो आप इस अधिकार के तहत जा सकते हैं न्यायालय में, अदालत में। फिर आता है बच्चों के पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार जो पॉइंट है हमारे संविधान का, वो है धर्मनिरपेक्षता का। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता को बहुत अहम भूमिका में रखा गया है। कैसे पढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे, जो दूसरा अध्याय है इस इकाई का, उसमें हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में ही बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। उसमें आप जानेंगे धर्मनिरपेक्षता भारत में कैसे है, संविधान में कैसे है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि ये जो राज्य, ये जो देश है हमारा, ये किसी भी एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं घोषित करता। वो नहीं कहता कि हाँ ये धर्म मानो, वो नहीं कहता। वो कह रहा है हमारा देश के संविधान ने कहा है कि हर धर्म एक समान है। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं, वहां देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं, वहां लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ ही नए संविधान की जरूरत भी पैदा हो गई थी। हम सब ने देखा कि कैसे संविधान को अगर आप बदल देंगे, जैसे खेल के नियम बदल देंगे तो वो खेल भी बदल जाएगा। तो अगर आप संविधान के जो आदर्श हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उस देश को चलाने में, तो वो देश कैसा होगा, उसके प्रतिनिधि कैसे काम करेंगे, ये तय करता है संविधान। बहुत महत्वपूर्ण है संविधान, तो इसलिए अगर उसके नियमों में आप कुछ भी छेड़खानी करेंगे तो समझिए कि आप अपने लोकतंत्र की रूपरेखा में, अपने समाज की रूपरेखा में छेड़खानी कर रहे हैं। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है, वे कई बार काफी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज्यादा फिक्र ना करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से उनका अर्थ जान पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप चिंता ना करें अगर आपको कोई भी अभी सिद्धांत समझ ना आया हो, क्योंकि हम यही आगे पढ़ने वाले हैं। अब चित्र जो है उनके बारे में लिखा है, उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। जब संविधान सभा के हर सदस्यों ने पूरा संविधान का गठन हो गया, पूरा संविधान बन गया, तो जो आखिरी बैठक थी अब उसमें सब जो है उस दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में पंडित नेहरू है दस्तखत करते हुए, दूसरे चित्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, और सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। अब दाएं से बाएं आप देखिए, पहले हैं श्री जयराम दास दौलतराम जी, इनके बाद हैं खाद्य एवं कृषि मंत्री, आजाद भारत के बारे में बात हो रही है, तो आजाद भारत के खाद्य एवं कृषि मंत्री थे श्री जयराम दास दौलतराम। फिर हमारे यहाँ राजकुमारी अमृत कौर जी हैं जो थी स्वास्थ्य मंत्री, फिर हैं डॉक्टर जॉन मथाई वित्त मंत्री, फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे जो, तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम जो थे श्रम मंत्री। ये लिखते हैं अब कि 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखा चित्र तस्वीरें बनाएं तथा उन पर कविताएं गीत लिखें तथा कक्षा में इन पर चर्चा करें। तो ये जो 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं, सिर्फ अधिकार ही नहीं है जो हमने पढ़े, वो क्या थे, वो अधिकार थे, कुछ मौलिक कर्तव्य भी होते हैं हमें भारत के नागरिक होने के नाते, तो उन पर आपको कहा गया है आप चित्र बनाएं, गीत लिखें, कविताएं गाएं, ताकि आपको उनके बारे में और जानकारी मिल सके। आए बच्चों, अब अभ्यास के प्रश्नों के हम उत्तर जो हैं वो डिस्कस करते हैं। पहला है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो आपको पता है कि लोकतांत्रिक जो देश होता है उसमें संविधान की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमने अलग अलग प्रकार के पॉइंट्स पढ़े हैं कि ताकि किसी भी तरह का अन्याय ना हो, अल्पसंख्यकों के साथ कोई भी जो सत्ता में है इस वक्त वो अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना करें, और बाकी जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े वो सब इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे, जो एक पूरा एक टाइटल ही है कि जिसमें कहा गया है कि संविधान आखिर क्यों जरूरी है, उसके सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। अब हम प्रश्न पढ़ेंगे बच्चों। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि नीचे दिए गए दो दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 के नेपाल का है, जो 1990 का संविधान था नेपाल का उसका है, और दूसरा कॉलम नेपाल के ताजा संविधान से लिया गया है। तो 1990 का नेपाल का संविधान भाग 7 कार्यपालिका अनुच्छेद 35, कार्यकारी शक्तियां नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियां महामहिम नरेश एवं मंत्री परिषद की निहित होंगी, और इधर लिखा है 2015 के संविधान के भाग से अनुच्छेद 75 में कि कार्यकारी शक्तियां नेपाल की कार्यकारी शक्तियां संविधान और कानून के अनुसार मंत्री परिषद में निहित होंगी। तो नेपाल के इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फर्क दिखाई देता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की जरूरत है क्यों? हमने पढ़ा था बच्चों कि इन्होंने कहा कि क्या फर्क है, पहली बात दो, तो हमने पढ़ा इधर किसके पास है शक्तियां, राजा के पास और उसकी मंत्रिमंडल के पास, और इधर शक्तियां हैं लोकतांत्रिक तरीके की शक्तियां, किस तरीके की, यानी जो जनता है वो चुनेगी कि उसे किसको सत्ता में लाना है। तो अब इन्होंने कहा है कि नेपाल को क्यों संविधान की जरूरत थी, क्योंकि जो राजा था वो अपनी चला रहा था, उसमें लोगों की सम्मति नहीं थी किसी भी प्रकार के निर्देश में या किसी भी प्रकार के निर्णय में, तो ये गलत था, ये था राजशाही शासन जो कि जिससे लोग खुश नहीं थे, तो इसलिए उन्हें नए संविधान की जरूरत थी ताकि उसमें ऐसे नियम कानून हो जो लोगों की सम्मति और लोगों के अधिकारों का रक्षा करें। अब तीसरा जो आता है प्रश्न वो है, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना होता तो क्या होता? अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना होता तो वो सत्ता पाते ही हो सकता है अपनी शक्तियों से अपने हितों के बारे में ही सोचने लगते और नागरिकों के हितों को ना ध्यान में रखकर उनका शोषण करने लगते, तो ये गलत हो जाता, इसलिए संविधान ने ऐसे नियम बनाए हैं जिससे लोग जो नागरिक हैं उन्हें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं ताकि उनकी रक्षा हो सके, उनके अधिकार, उनकी आजादी की रक्षा हो सके और उनके हितों का ध्यान रखा जाए। चौथा है, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है हमें ये बताना है, और इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान क्यों महत्वपूर्ण है, एक एक कारण बताइए। एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं। अब 20 पुरुष हैं और 10 यानी महिलाएं हैं, तो अल्पसंख्यक महिलाएं हुई, और उनके विचारों का सम्मान इसलिए जरूरी है क्योंकि वे भी उतनी ही शिक्षित हैं जितने की पुरुष शिक्षक शिक्षित है, उनमें भी उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंस है, उनमें भी उतना ही दिमाग और विवेक है, तभी वो भी शिक्षक हैं। तो इसलिए ये किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए इस बेसिस पर कि वो महिलाएं हैं या पुरुष हैं। फिर दूसरा, एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो 5% जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अल्पसंख्यक हुए। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो सिर्फ 5% हैं तो जो बहुसंख्यक लोग हैं और धर्म को मानने वाले, वो उन 5% के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करके अन्याय करे या उनके धर्म के खिलाफ कुछ करे, क्योंकि ये गलत है, हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। क्योंकि वो अपने धर्म को मानते हैं तो उनके धर्म की भी रक्षा होनी चाहिए, उनके पास अधिकार है। तीसरा है, एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं, तो जो 20% मांसाहारी हैं उनके साथ भी किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि वो जो चाहें वो खाएं, उन पर कोई बंधन नहीं कर सकता किसी भी प्रकार का, अगर संविधान के तहत वो सही है तो। चौथा है, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से है, यानी कि 10 गरीब परिवारों से है, तो हमारा संविधान यह हक बिल्कुल नहीं देता कि वो 10 विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार का न्याय हो, क्योंकि वे 10 गरीब विद्यार्थी भी बहुत ही अच्छे और मेहनती विद्यार्थी हैं, तभी वो उस कक्षा में बैठे हैं। तो हमें कोई भी हक नहीं है, कोई भी हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम पैसा देकर, पैसे के बेसिस पर या किसी और भी बेसिस पर उनके साथ भेदभाव करें। पांचवा है कि नीचे दिए गए कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय ये आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। संघवाद क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस तरह क्या होता है, जो सत्ता है वो अलग अलग स्तरों में बढ़ जाती है, तो हर प्रांत का एक केंद्र सिर्फ नहीं ध्यान रख सकता, पर राज्य सरकार ध्यान रख पाती है और इस तरह देश अच्छे से काम कर पाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा आप लिख सकते हैं कि और संघवाद में कि हमारे पास पूरा ये फायदा रहता है इस तरह कि हम अपने अपने तबके की परेशानियां जो हैं वो अपने अपने उम्मीदवार को बताकर दूर करवा सकते हैं। दूसरा है शक्तियों का बंटवारा। तो शक्तियों का बंटवारा क्यों अच्छा है? क्योंकि इस तरह क्या होता है, जो तीनों न्यायपालिका और विधानपालिका और विधायिका न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं कि तीनों आपस में सही काम कर रहे हैं नहीं, कोई अपने सत्ता का गलत फायदा तो नहीं उठा रहा, अपनी शक्ति का गलत फायदा तो नहीं उठा रहा, और दूसरा ये भी कि वो बचाता है इस तरह की जो अलग अलग बांट दी जाती हैं शक्तियां, ये हमें बचाती हैं किसी भी तरह के अन्याय से लोगों को, क्योंकि एक गलत काम करेगा तो दूसरा उसको रोक देगा। फिर मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौलिक अधिकारों की वजह से ही लोगों के पास अधिकार होते हैं खुल के जीने के, उनपे किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता, कोई और उनका शोषण नहीं कर सकता। और दूसरा ये कि जिन उम्मीदवारों को चुना गया है वो उम्मीदवार भी सत्ता में आकर अपने लोगों जो है उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते, और अपने हितों के बारे में ही नहीं सोचना है उन्हें, उन्हें लोगों के हितों के बारे में काम करना है। तो चौथा है संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति इसलिए बहुत अच्छी है, इसलिए जरूरी है, क्योंकि इस तरह से क्या होता है कि जो लोग, जो गवर्नमेंट है, जो हमने सत्ता चुनी है, जो सरकार है, वो लोगों के प्रति जवाबदेह है, वो लोगों को बताएगी कि हमने ये काम किया तो क्यों किया और ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया। लोग हमेशा किसी भी अन्याय से बचे रहेंगे, और जो सामने वाली अपोजिशन पार्टी होती है वो हमेशा जो सरकार है उसको क्रिटिसाइज कर सकेगी, जो सरकार है उसको कह सकेगी कि अगर उसने गलत पॉलिसीज बनाई हैं, तो अगर सरकार गलत करेगी नागरिकों के साथ तो सरकार के सामने बहुत सारी, सरकार के खिलाफ बहुत सारे प्रश्न उठ जाएंगे जिनका जवाब उसको देना होगा। संसदीय शासन पद्धति के तहत ये बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा ये कि संसदीय शासन पद्धति के द्वारा जल्दी निर्णय लिए जाते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम जल्दी से हो जाता है और डिसीजन लिए जाते हैं, नए कानून बनाए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रांत के लोग हैं जो कि अपने अपने तबके की परेशानियां वहां रखते हैं। छठा प्रश्न है बच्चों के, एक इंडिया का, भारत का जो दिया गया है मैप, उसको देखकर हमें बताना है कि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल इन सब से कौन कौन से राज्य लगे हैं भारत के, कौन कौन से राज्य सीमाएं जो हैं वो शेयर करते हैं इन देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ। तो पहला है बांग्लादेश। आप देखेंगे जब मैप में तो बांग्लादेश जो है वो अपनी सीमा उसके साथ सीमा लगी है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की, आसाम की, मेघालय की, त्रिपुरा की और मिजोरम की। भूटान के साथ लगी है सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की। और नेपाल के साथ लगी है सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड की। अब शब्द संकलन है बच्चों, जिसमें कुछ शब्दों के मीनिंग दिए गए हैं। पहला है मनमानापन। इसका मतलब है जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसलों या पसंद नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमानापन कहा जाता है। आप सभी को पता है जब कोई अपनी अपनी चलाता है यानी वो अपनी मनमानी कर रहा है, जहां नियम तय नहीं हो किए ना गए हो और जहां फैसलों का कोई आधार ही ना हो उसे मनमाना कहा जाता है। आदर्श का क्या मतलब है, जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं सदी में हुआ था। इस आंदोलन में हजारों मर्द औरत ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए थे। यह आंदोलन 1947 में भारत की आजादी में परिणत हुआ। इसी वर्ष की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इस आंदोलन को आप और अच्छी तरह से जानेंगे। राज्य व्यवस्था क्या है, जिसे पॉलिटी कहा गया है। इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित हो। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। राज्य व्यवस्था यानी एक ऐसा राज्य जिसकी एक ऐसा देश जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित हो। राज्य व्यवस्था एक ऐसा समाज जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित हो, यानी पता हो कि किस तरह से काम किया जाना चाहिए, किस तरह से काम किया जाएगा। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। संप्रभु का अर्थ होता है कि जो स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है, जो स्वतंत्र हो जनता, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो। मानव व्यापार क्या है, राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीजों की गैर कानूनी खरीद बिक्री को अवैध व्यापार कहा जाता है और इसी के तहत मानव व्यापार आता है, जिसमें इस अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है उनके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरतों और बच्चों की गैर कानूनी खरीद फरोख्त से है, जिसे मानव व्यापार कहा जाता है, जैसे कि मैंने तब बताया था। निरंकुशता का मतलब होता है, इसका मतलब सत्ता या अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से है। निरंकुशता मतलब बिना अंकुश के आप अपनी सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्रूर, और वो जब बिना अंकुश के जब सत्ता का इस्तेमाल किया जाता है, अपने पावर का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमेशा क्रूर और अन्यायपूर्ण ही होता है। आशा है आपको अध्याय एक समझ आया होगा। धन्यवाद बच्चों।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।